نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج هم إن شاء الله تعالى سورة المائدة آيات نمبر 67 سے 82 تک إن شاء الله پارے کو مکمل کریں گے. آج کا لیسن بھی پیچھے سے کنٹینیویشن ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کتاب کی اہمیت کے بارے میں، اس بارے میں کہ ان میں سے بھی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ امت مقتصدہ ہیں، جو بیلنس چلنے والے ہیں، لیکن اکثر ان میں سے کیسے ہیں؟ ایسے لوگ ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم آگ بھڑکاتے رہتے ہیں، جنگ کی، لڑائی جھگڑے کی. ایسے لوگ ہیں جو گناہوں میں اور عدوان میں پڑے ہوئے ہیں، زیادتی میں. ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں، خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا رشوت کی بات آئی ہے، تو ان کی جو جرائم ہیں ان کو بتایا گیا ہے، اور اصل میں امت مسلمہ کو سکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے ان کی مثال دے کر کہ تم ایسے نہ بننا. لیکن اگر آپ غور کریں تو ہم کچھ سمجھنے کے شاید موڈ میں نہیں ہوتے، بس پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ ایسا ہمیں کچھ خاص اس سے لیتے نہیں اپنے لیے لیسن. جیسے کہ ہم آج کل بہت دفعہ کہتے ہیں یہ دو عرب لوگ ہیں، ان کو تو سمجھ آنی چاہیے، ان کی تو زبان عربی ہے، پھر ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہے. اگر اپنے اوپر بھی رکھ کے دیکھیں تو ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ان یہودیوں کے اور نصارہ کے جو انہوں نے جرائم کیے ہیں ان کو اچھی طرح اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان فرما دیے. اس سے زیادہ آبویس چیزیں نہیں ہو سکتی، پھر بھی ہم انہی چیزوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں، دیکھتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی. اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ علماء کے اوپر بہت شدید ترین جو آیت آئی ہے، آیت نمبر 63، کہ کیوں نہیں وہ ان کو منع کرتے ان برائیوں سے، کیوں نہیں وہ ان کو کہتے کہ حرام نہ کھاؤ. تو بھلے سب کے اوپر ہی ذمہ داری ہے، لیکن جس کے پاس علم ہے اس کے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچائے صحیح بات کو، ان کو بتائے. جتنا بھی علم ہے اس کے مطابق لوگوں تک بتانا ضروری ہے. اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ کن لوگوں کے ساتھ آپ دوستی کر سکتے ہیں اور کن کو دلی دوست نہ بنایا جائے، جن میں یہود و نصارہ بھی ہیں، جن میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا. اب وہ یہاں پہ تو اہل کتاب میں سے کہا گیا یا کافروں میں سے کہا گیا، مگر اگر کوئی سو کالڈ مسلمانوں میں سے بھی ایسا ہے جو اپنے ہی دین کا مذاق بنا لے، اپنے ہی دین کے لطیفے بنائے، اپنے ہی دین کے اوپر ہنسے، تو ایسے لوگوں کو بھی دوست نہیں بنانا چاہیے. کیونکہ ایک مومن یہ برداشت کبھی نہیں کر سکتا کہ وہ جس رب کی تعظیم کرتا ہو، جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہو، اس کے بعد پھر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جو انہی رسول کے اوپر باتیں بنائیں اور ہنسے. ٹھیک ہے، تو اتنی کم از کم غیرت ہونی چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ رکھی جائیں اور ان کے ساتھ تعلقات نہ بڑھائے جائیں. تو ہم نے کافی چیزیں اس میں الحمدللہ کور کی ہیں، اور اگر آپ لکھنے بیٹھیں تو بہت سارے آپ کو پوائنٹس مل سکتے ہیں اس سے کہ کون کون سے جرائم ان کے تھے اور کون کون سے جرائم ہیں جس میں آج امت مسلمان ان کے ہی نقش قدم پہ چلنے لگی ہے. ٹھیک ہے، اچھا، پھر آج بھی ہم بہت ساری ایسی باتوں کو دیکھیں گے، مگر سب سے پہلے آج کی آیت جو آ رہی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پہ مخاطب کر رہی ہے. یہ آیت، آیت نمبر 67 سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول، اے رسول، بلغ، آپ پہنچا دیجئے. کیا پہنچا دیجئے؟ باتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، ہم بھی پہنچاتے ہیں. ہم کیا پہنچاتے ہیں؟ ہمیں کیا شوق ہوتا ہے پہنچانے کا؟ گوسپس ادھر کی ادھر، اور وہ چیزیں جو کہ معاشرے کے اندر افواہیں پھیلی ہوتی ہیں ان کو، या किसी के स्कैंडल्स, ये पहुंचाने का बहुत शौक होता है हमें। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने क्या पहुंचाने की जिम्मेदारी अता फरमाई, और उसी से हमें भी अपने लिए एक मकसद पता चलता है कि जब उनके उम्मती हम हैं तो हमें भी ये काम करना है कि क्या फरमाया, मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिक, जो नाजिल किया गया आपकी तरफ आपके रब की तरफ से, यानी जो वही आपके ऊपर नाजिल हो रही है उसको आप आगे पहुंचा दें। और कैसे पहुंचाएं, एज इट इज पहुंचाएं। पहुंचाने के अंदर एक मामला बड़ा ही मुश्किल होता है कि इंसान सोचता है कि हाय दूसरे को ये बात पहुंचा दी ना तो कहीं माइंड ना करे, कहीं ऑफेंड ना हो जाए, कहीं मेरा दुश्मन ना बन जाए, आए फिर मुझसे कहीं दोस्ती ना तोड़ दे, तो लिहाजा मीठी मीठी बातें करो, ऐसी ऐसी बातें करो कि ये हमने इसको देखो परेशान नहीं करना, हमने इसको अनॉय नहीं करना, हमने बस ऐसी बात करनी कि जो बस बीच बीच वाली हो, जो इसके मिजाज के ऊपर गरा ना गुजरे। ऐसे ही किया जाता है ना पहुंचाना। बाज लोग आज दीन को भी ऐसे पहुंचाते हैं कि मोल्ड करके, जिसके अंदर उनकी भी रायत रखी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नहीं पहुंचाया। नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे बात की जो मुशरिक थे, और खुले आम उनको कहा कि तुम गलत कर रहे हो, ये नहीं कि ऐसी ढकी छुपी बातें, नपी तुली बातें, मीठी मीठी ऐसी बातें कि बस आप भी खुश रहें। देखिए हम और आप एक ही खुदा को मानते, आप भी एक को मानते, आखिर तो आप एक को ही मानते हैं और हम भी एक को मानते, तो असल में सभी ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। ये दीन को पहुंचाना नहीं है। जाहिर है जब कोई बातिल के ऊपर होगा और आप हक बात करेंगे तो उसको बुरी तो लगेगी। हाँ हिकमत जरूरी है कि आपने हिकमत के साथ पहुंचाए, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत के साथ बातें पहुंचाई, कहाँ से पहले शुरू करना है, किस तरह से उनको बयान करना है, किस तरह से उनको लॉजिक से समझाना है कि ये क्या कर रहे हो तुम, वो अलग बात है। मगर ये नहीं हो सकता कि हम ये कहने लगे कि नहीं नहीं जी आप भी ठीक हैं हम भी ठीक हैं, कोई मसला ही नहीं है जी, आप देखिए ये ऐसे ही इन्होंने शुरू किए हैं, जो मौलवी हजरात हैं उन्होंने ऐसे, कोई मामला नहीं है, आप बस मतलब परेशान ना हो, फिक्र ना करें, हम भी अच्छे आप भी अच्छे, ये कोई पहुंचाना नहीं होता। समझ जाए, जो हक है ना वो पहुंचाना बड़ा दिल गुर्दे का काम है, आसान नहीं है। ऐसे ही नहीं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए, अगर आप भी इस तरह से ही करते कि आप भी अच्छे हम भी अच्छे कोई बात नहीं, उन्होंने तो कहा था आप एक साल हमारे बुतों को पूज लें, एक साल हम आपके खुदा को मान लेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना कुछ कुछ, वो कहते थे थोड़ी लचक दिखाए ना, आप इतने सख्त क्यों हो रहे हैं कि नहीं बस आप उसको ही मानना है, एक ही खुदा को मानना है और तुम किसी को भी ना मानो और सारों को ही छोड़ दो, इतनी भी सख्ती की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, जो हक है चाहे उसमें किसी को सख्ती लगे या जो भी लगे, वो बात कह देनी है। अब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी अप्रोच अपनाते तो दीन का पैगाम ना पहुंचता उनको, सच्चा दीन उनके आगे ना आता, और इसी वजह से वो आपके दुश्मन बने। वरना दुश्मनी की क्या जरूरत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले भी तो गारे हिरा में जाके अपने इबादत करते थे, बैठते थे, उन्होंने तो नहीं कुछ कहा था, तब कहना शुरू किया ना जब आपने हक बात उनको कही, या आपने कहा कि अगर तुम ये करते रहोगे तो फिर आगे क्या है, जहन्नुम की आग है, तो ये तो बुरी ही लगेगी ना। तो इसलिए अल्लाह ताला ने जो जिम्मेदारी डाली है रसूल के ऊपर, इसी तरह रसूल की उम्मतियों पे भी, क्योंकि अब कोई रसूल नहीं आना, कि आपने पहुंचा देना, बल्लिग पहुंचा दें, चाहे दुनिया जो मर्जी समझती रहे, जो मर्जी कहती रहे, जो मर्जी मुखालफत करती रहे, जो हक है वो तो हक बात है। हाँ ऐसे खड़े होकर ना कहें कि बिल्कुल आपे से बाहर हो जाएं, गुस्से में बोल रहे हैं और कंट्रोल में नहीं आ पा रहे कि जी मैं हक बात कह रही हूं, नहीं ऐसे नहीं, आप अच्छे सही ठंडे दिमाग के साथ कहेंगे, लेकिन कहेंगे हक, ठीक है। तो ये चिकनी चुपड़ी बातें करके और इस तरह करके ना ये काम नहीं बनता, ठीक है। इसी तरह एक जगह पे हमने पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम में कोई अल्लाह की नाफरमानी करे और लोग बावजूद रोकने की कुदरत और गलबे के उसको ना मिटाएं, तो अल्लाह ताला सब पे अपना अजाब नाजिल कर देता है। यानी पहुंचाना जरूरी है। अगर आप देख रहे हैं कि अल्लाह की नाफरमानी में पड़े हुए हैं, आप पहुंचाइए, जबकि आपके पास अगर कुदरत भी है तो आपके पास इल्म है, आप दीजिए। मीठे मीठे बन के ना बैठे, क्या है मेरी दोस्त है, आई ये है, नहीं कह दें, क्योंकि कयामत के दिन अल्लाह ताला फिर पूछेंगे, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि क्या, वो इंसान को कहेंगे कि क्यों नहीं तूने पहुंचाया, तो वो इंसान कहेगा या अल्लाह मैं डर गया था, या अल्लाह मैं ऐसा, अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरी जात इस काबिल थी कि तुम मुझसे डरता ना कि तुम उनसे डर गए। अल्लाह की जात है कि जिससे डरा जाए। तो पहुंचाएं, जो आप सीखते हैं उसको आगे बताएं और उसमें झिझके नहीं। ये हमें वो ना कहना शुरू कर दें, कोई हमें लेबल ना लगा दें कि तुम तो फलां बन गई हो, तुम तो फलां फिरके की बन गई हो, तुम तो वहाबी हो गई हो, तुम तो ये हो गई हो। मैंने नहीं बताना भाई, नहीं आप बताइए, हक को बताएंगे नहीं, छुपाने से क्या होगा। छुपाने से हक जो है ना वो नीचे दब जाता है और बातिल ऊपर आ जाता है। वह इल्लम तफ़अल, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी बड़ी बात कही गई, वह इल्लम तफ़अल, ए नबी अगर आपने ऐसा ना किया, फमा बल्लगता रिसालता, तो आपने रिसालत का हक ही अदा नहीं किया, तो नहीं आपने पहुंचाया इस पैगाम को। क्या मतलब है, अगर आपने ऐसा ना किया तो ये ऐसे ही है जैसे आपने पैगाम पहुंचाया ही नहीं। यानी एक बात भी अगर आपने छुपा ली तो ये ऐसे है कि आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया, पहुंचाने का हक। रिसालत क्या है, रिसालत रिसाला से है, अरबी में रिसाला कहते हैं पैगाम को, यानी पैगाम का हक नहीं आपने अदा किया। जो आपको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी थी कि इंसानियत को आपने पहुंचाना है, वो हक अदा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने कोई चीज छुपा ली, अगर आपने कोई चीज बताने से रह गई, तो आपने हक अदा नहीं किया रिसालत नबुवत का। ठीक है, समझ आ रही है बात, कि यानी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी आपके पर, छोटी बात नहीं थी, मामूली बात नहीं थी। और इस जिम्मेदारी का नबी अलैहिस्सलाम को इस कदर एहसास था ना कि दुनिया से जाने वाले हैं, देखें हज्जतुल विदा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जम्मे गफीर है सहाबा का, मुसलमान जगह जगह से जमा हुए हैं। अब उस वक्त जबकि आपको पता है कि अब शायद मेरे पास दोबारा मौका ना हो, जैसे आपने फरमा भी दिया था मुझसे हज के मनासिक सीख लो, शायद इसके बाद मैं तुम्हारे में ना हूं कि मैं तुम्हें सिखा सकूं, तो आपको इंडिकेशन थी कि अब मैं नहीं रहूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त खुतबा दे रहे हैं लोगों को और क्या फरमाते हैं, सही मुस्लिम में है, फरमाते हैं तुम मेरे बारे में अल्लाह के यहाँ पूछे जाओगे, यानी अल्लाह तुमसे पूछेगा इसने तुम्हें पहुंचा दिया था। क्योंकि देखे ना क्यों अल्लाह ताला पूछेगा, अब देखिए ना, क्योंकि वहां पे इंसान जो होंगे वो तो मुकरना शुरू हो जाएंगे, वो तो डिनाई करेंगे, नहीं जी हमें तो कुछ पता ही नहीं था ना, हम तो बेचारे मासूम, हमें किसने बताया, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। तो अल्लाह ताला पूछेंगे लोगों से कि तुम तक पैगाम पहुंचा था, तो ये काफिर मुशरिक तो ये कहेंगे ना हमें नहीं पैगाम पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में अपने सहाबा से ये गवाही ली, तुम बताओ तुम अल्लाह के हाँ मेरे बारे में पूछे जाओगे कि भाई इन्होंने तुम्हें पैगाम पहुंचा दिया था, तो तुम क्या जवाब दोगे। तो सब ने क्या कहा, सब ने एक जुबान होके क्या कहा, आपने फरमाया हल बल्लव तू, क्या मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, तो सहाबा ने जवाब दिया सिर्फ ये नहीं, कद बल्लगता, इसका जवाब तो ये होना चाहिए था, आपने तो पहुंचा दिया, कद बल्लगता वह अदईता वह नसहता, आपने पहुंचा दिया, आपने हक अदा कर दिया, आपने खैर ख्वाही कर दी, ये सब आपने लोगों ने उस वक्त कहा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इस पर इक्तफा नहीं किया, फिर आपने सर आसमान की तरफ उठा के फरमाया अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, तीन मरतबा ये फरमाया कि मैंने पहुंचा दिया, अल्लाह मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, मैंने पहुंचा दिया और इन लोगों ने गवाही दे दी है कि मैंने पहुंचा दी, कि ना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। क्योंकि देखिए मसलन आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है कि आपने ये काम करना है, आप उसमें से आधा करती हैं आधा करती नहीं, तो वो कोई आपको कहता है आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। तो ये कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी थी आपके ऊपर कि आपने जो आपके ऊपर नाजिल हुआ है वो आपने पहुंचाना है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक बात पहुंचा दी। सही बुखारी में आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं, जो तुमसे ये कहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के नाजिल करता किसी हुक्म को भी छुपा लिया तो जान लो कि वो झूठा है। ये आप बात को याद रखिएगा, क्योंकि देखिए आज के दौर में ना बाज लोग क्या कहते हैं, नहीं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कुछ बातें सिर्फ हजरत अली को बताई थी, कुछ बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ हजरत इब्ने अब्बास को बताई थी, खास उनको कुछ इल्म दिया गया है जो उनको ही बताया गया था और नहीं किसी को बताया गया। तो ऐसी बात नहीं है, हजरत अली ने खुद फरमाया मेरे पास कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, ना कोई मेरे पास किताब है सिवाय अल्लाह की किताब की, या वो समझ है दीन की जो एक मुसलमान आदमी को फहमो फरासत अता अल्लाह ताला फरमाता है, बस वो है। ये बात भी कहना कि उन्होंने सीक्रेटली किसी को बताया और उनको कह दिया तुम ना आगे कहीं बताना, या उन्होंने कोई बात अपने पास छुपा के रख ली और लोगों को नहीं बताई, या उन्होंने किसी खास ही सहाबी को बताई और किसी को नहीं बताई, ये बहतान है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ये झूठ है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान में कि आपका ये मनसब नहीं है कि आप कुछ छुपाएं, आपके लिए ये जेबा नहीं है कि आप छुपाएं, अगर आपने ऐसा किया तो समझ लें कि आपने हक के लिए अदा की। इसीलिए मैंने आपको यह हदीस एक दफा पहले भी बताई थी, बड़ी प्यारी हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने कोई ऐसी चीज भी नहीं छोड़ी जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर सकती हो और जहन्नम से दूर कर सकती हो, मगर मैंने उसका तुम्हें हुक्म दे दिया, यानी सब चीजें मैंने तुम्हें पहुंचा दी हैं बता दी। इसके बावजूद भी अगर लोग आज कुछ नई नई बातें निकाल के कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी ख्वाब में आए थे, उन्होंने ऐसे मुझे कहा, कोई नई बातें बना के, कोई नई चीजें, उन्होंने ये कहा उन्होंने वो कहा, और नहीं जी मुझे तो इस तरह से ख्वाब आ गया और मुझे तो इस तरह जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आके बता रहे हैं, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना उस वक्त नऊज़ु बिल्ला भूल गए थे और आज आके बता रहे हैं, और 1400 साल से जितने मुसलमान गुजरे हैं उनका क्या कसूर था, उन तक तो ये बात पहुंची नहीं जो आज आपको ख्वाब आ रहा है, तो ये दुरुस्त नहीं है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि ऐसा कहने वाला जो ऐसा कहता है ना, ये ऐसे ही है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम पहुंचाने में नाउज़ु बिल्ला खयानत की है, कि कोई अच्छा काम था जो आपने हमें नहीं बताया। आज बिदात क्यों है बताएं, लोगों ने नई नई चीजें क्यों निकाली हुई है लोगों ने, इसका एक ही जवाब है, वो कितने ही अच्छे काम है, वो बड़े ही आपको पसंद है, नहीं आप कहते हैं इसमें क्या हर्ज है, नहीं इसमें इसमें बुराई क्या है, मुझे बुराई बताएं, बुराई की बात नहीं है। आप ये बताना चाहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउजु बिल्ला पैगाम पूरा नहीं पहुंचाया, अल्लाह को ये काम पसंद था, ये काम हमें जन्नत के करीब करने वाला था, इस काम से अल्लाह ने बहुत सवाब देना था, इससे हमने जन्नत में दाखिल हो जाना था, लेकिन नाउजु बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह मुझे कहते हुए भी हो रहा है कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताना भूल गए, उन्होंने नहीं बताया तो आज लोगों को ये याद आ गया, या 100 साल पहले याद आया, 200 साल, ये सारी बिदात जो है ना ये बहुत बाद की चीजें हैं, शुरू के लोगों ने कहाँ बिदतें की, ये सब बाद में लोगों ने शुरू की नई नई चीजें ईजाद करके। लेकिन मुझे चूंकि बहुत पसंद है, मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी ऐसे करते थे, हमारे घरों में भी ऐसा होता था, हमारे तो खानदान में ऐसा होता है, बस मैंने करते ही जाना भले दीन में है या नहीं, तो आपको ये परवाह नहीं है कि दीन क्या कहता है, खालिस दीन क्या है उसको पकड़े, उसकी परवाह नहीं, बस ये कि हमारे बाप दादा तो यही करते थे, हमारे यहाँ घर में तो शुरू से ऐसा होता है, बस शुरू से अगर ऐसा होता है तो बताएं, खुद बताएं जब से भी ऐसा होता है शुरू से, तो क्या वो दीन बन जाता है जो आपके घर में होता था, या जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है वो दीन है। पहले तो हम ये फैसले कर लेना हमने किधर को जाना है, हमने वो करना है जो शुरू से होता था, या फिर हमने वो करना है जो अल्लाह रसूल लेकर आए, जो अल्लाह का कलाम कहता है, जो रसूल हमें देकर गए। जब वो ऑनेस्टली बता रहे हैं कि मैंने कोई ऐसी बात छोड़ी ही नहीं है, छोड़ी नहीं है, तो फिर क्यों करते हो जो नई नई चीजें, उन्होंने पैगाम पहुंचा दे, कितनी उनको इसकी फिक्र थी कि मैंने पहुंचा दिया कि नहीं, मैंने पहुंचा दिया कि नहीं लोगों, इतनी जो फिक्र करके और पैगाम को दे रहे हैं उनके ऊपर ये बोहतान नहीं है, झूठ नहीं है, तो और क्या है? क्या आज हम कहें कि हमें ज्यादा खबर मिल गई, हमें ज्यादा पता चल गया कि इस तरह करने से बहुत अच्छा सवाब मिलता है? मैं और आप कौन होते हैं कि हम ये बातें डिफाइन करें, किस चीज में जन्नत है, किस चीज से हमारी बख्शिश हो सकती है, किस चीज से हमें सवाब मिल सकता है? मैं और आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दीन अल्लाह का है, वो ही बताएगा किससे सवाब मिलता है और किससे उसको बख्शिश होती है और किससे क्या होता है। तो देखें, अल्लाह ताला ने अपने दीन को सबसे अजीम फरिश्ता है, जो अमानतदार फरिश्ता है, सारे ही फरिश्ते अमानतदार है, मगर तमाम फरिश्तों के जो सरदार अमानतदार फरिश्ते हैं उनके थ्रू इस वही को नाजिल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी से आगे पहुंचाया, सहाबा ने अमानतदारी से आगे पहुंचाया। अब ये हमारा काम है कि हम भी अमानतदारी से आगे पहुंचा दें, ना कि अपने मिक्सिंग कर करके फिर देते जाओ। मैं सोच रही हूँ कि जो मैं मिक्सिंग करूंगी ना, ये बड़ी अच्छी है। क्यों? क्या मेरी बात अल्लाह रसूल की बात से आगे बढ़ सकती है? नहीं, मुझे बस काम क्या है, पहुंचा देने का। काम किसी को मनवाने का नहीं है। बार दफा मनवाने की खातिर हम, जैसे अगर मुस्लिमों से बात करेंगे या अपने मुसलमानों में, मनवाने की खातिर दीन को ऐसा ट्विस्ट करेंगे, ऐसा तोड़े मरोड़ेंगे कि वो बात ही, उसका वो जो हक बात है उसके अंदर से वो बात ही खत्म हो जाती है। नहीं, जो बात है उसको वैसे पहुंचाए, जो कहा गया उसको। आपका काम किसी को मनवाना नहीं है, आपका काम सिर्फ पहुंचाना है, इबलाग है आपका काम। बल्लिग, ये कहा गया, ये नहीं कहा गया मनवाओ लोगों को। ऐ रसूल, आपका काम है कि आप मनवाएं, आपका काम है कि ये लोग मुसलमान हो, ये आपका काम है। नहीं, रसूलों का काम भी क्या था? पहुंचा देना। मेरा और आपका काम भी क्या है? पहुंचा देना, ना कि ये करना कि अब मैं इसको किसी तरह भी करके, और आप इसके इतने भयानक नतायज आज क्रिश्चियनिटी जो भुगत रही है ना, ये जो इनका अकीदा खराब हुआ है, ये आगे हम आज के सबक में बात करेंगे, किस तरह ये यहां तक पहुंचे इसी शौक में कि हाँ जी दूसरे हमारे दीन के अंदर आ जाए तो अपने दीन को तरोड़ मरोड़ो ताकि एक्सेप्टेबल हो जाए दूसरे के। नहीं, वो आपसे अगर मिसलन सवाल करते हैं कि अच्छा तो क्या फिर ये भी जायज नहीं है, ये भी जायज नहीं है, ये भी, आप एक मत से बात कर सकते हैं, हाँ भाई आपको ये भी बातें समझ आ जाएंगी, पहले आप ये चीजें छोड़ो जो शिर्क की हैं, ये भी आपको बताया जाएगा, एक मत से कह सकते हैं। मगर ये नहीं कि नहीं, वो तो कुछ नहीं, वो तो जी हमारे इतने वो मौलवियों ने बनाई है, आप उस चीजों की तो फिक्र ही ना करें, वो तो है ही नहीं, वो तो ऐसे ही ना बना दी, बस आप मुसलमान हो जाए एक दफा, ये चीजों की ना करो। नहीं, जो है हक वो वैसे ही है, वो किसी की ख्वाहिशात के मुताबिक हम बदल नहीं सकते कि आज के लोगों को ये चीजें नहीं पसंद है तो हम इनको बदल दें। कई चीजें हैं हमारे दीन के अंदर ना जिनको के लोग नहीं आज पसंद करते, या बदनाम हो गई हैं, वो लफ्ज बोलते हुए भी लोग डरते हैं, तो उनको कह देते हैं नहीं ये तो है ही नहीं, ये तो कोई चीज ही नहीं है, ये तो उस जमाने की चीजें, आज की नहीं है। तो पहुंचाना है, मैंने और आपने भी पहुंचाना है। बल्लिगू अन्नी वलव आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहुंचाओ मुझसे, चाहे एक आयत ही पहुंचा दो, एक आयत ही बता दो। कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होती हैं, मुसलमानों में बैठे हो, गैर मुस्लिमों में बैठे हैं, कहीं आप काम करते हैं, कहीं आपके क्लास फेलोज हैं, कि एक आयत पहुंचाना भी मुश्किल है क्या? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहुंचाओ। अब हम आगे सहाबा को जिम्मेदारी दी, उन्होंने पहुंचाया, उनसे आगे जिम्मेदारी इसी तरह आगे आगे चलती है। तो आपके नबी आपके लिए नसीहत कर गए हैं, प्यारी बहनों सुन लो, बल्लिगू अन्नी वलऊ आया, मुझसे पहुंचाओ, चाहे एक आयत ही पहुंचाओ, चाहे एक आयत ही बता दो आगे, पहुंचाओ जरूर। ठीक है, अब पहुंचाने में एक और चीज क्या होती है, ये जो मैंने आपको कहा कि लोगों का खतरा हो जाता है ना कि लोग दुश्मनी करेंगे, लोग क्या करेंगे, लोग पता नहीं कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो मुजाहिद फरमाते हैं कि जब ये हुक्म नाजिल हुआ कि जो कुछ उतरा है सब पहुंचा दो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मैं अकेला हूँ और ये सब मिल के मुझ पे चढ़ दौड़ते हैं, मैं किस तरह करूँ। तब ये दूसरा जो जुमला उतरा, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, यहां से इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, तो अल्लाह आपको बचाएगा लोगों से। इस आयत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौकन्ने रहते थे, लोग आपका पहरा भी देते थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से उठे, नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा या रसूलल्लाह आज क्या बात है? फरमाया काश कि मेरा कोई सहाबी, कोई ऐसा नेक बख्त सहाबी हो जो आज मेरा पहरा दे। ये बात हो ही रही थी कि मेरे कानों में हथियार की आवाज आई, और तो देखा तो आपने पूछा कौन है, जवाब मिला साद बिन मालिक। फरमाया कैसे आए? जवाब दिया इसलिए कि रात भर आपकी चौकीदारी कर, इसके बाद फिर आप आराम से सोए थे। ये बुखारी और मुस्लिम में रिवायत है। तो लेकिन जब ये आयत उतर गई तो उसके बाद आपने फिर अपने जो भी पहरेदार थे उनसे फरमाया, जाओ अब मैं अल्लाह की पनाह में हूं, तुम्हारी चौकीदारी की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमा दी ना, अल्लाह आपको बचाएगा लोगों से। वैसे तो अल्लाह ताला ने थ्रू आउट ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई है। मक्के में आपने देखा कि अबू तालिब, उनको अल्लाह ताला ने ऐसा समझ ले एक आपके लिए गार्डियन बना दिया, ऐसे ऐसा एक मुहाफिज बना दिया कि आपकी मोहब्बत आपकी इज्जत उनके दिल में इतनी थी कि उन्होंने सबसे दुश्मनी ले ली, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किसी को मैली आंख से देखने नहीं दिया। उनके दुनिया से जाने के बाद अल्लाह ताला ने अंसार के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाल दी, आप उनके पास चले गए। अब वहां पे और भी थे ना, मुनाफिकीन भी हैं, यहूदी भी हैं, ये सारे ही थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे, आपके दुश्मन थे। तो यहूदियों का तो आपको पता है कि उन्होंने तो कितने तरीके अपनाए, खुफिया इन साजिशें करना ना इनका तरीका रहा, जादू इन्होंने किया, इन्होंने वो जहर मिला हुआ बकरी का शाना आपको दावत में खिलाने के लिए दे दिया, इसी तरह चक्की का पार्ट ऊपर से फेंकने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से कत्ल कर दें। तो अल्लाह ताला ने हर जगह पे हिफाजत फरमाई, हर जगह पे अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी मदद फरमाई। इसी तरह एक सफर में आपको पहले भी बताया था, ये जब भी सफर में जाते थे तो सहाबा कराम कोई घना सायादार दरख्त देखते थे आपके लिए कि आप वहां पे आराम कर लें। तो एक दिन इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे सोए हुए थे, तो एक बद्दू आया और आपकी तलवार जो दरख्त पे लटकी हुई थी उसको उतार लिया, और फिर उसने उतार के कहने लगा, अब बता कौन है जो तुझे बचाएगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मुझे बचाएगा। उस वक्त उसके हाथ कांपने लगे और तलवार उसके हाथों से गिर गई। ठीक है, तो इसी तरह इब्ने अभी हातिम में है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनू नज्जार से गज़वा किया तो ज़ातुर रिक़ा खजूर के बाग में आप एक कुएं में पैर लटकाए हुए बैठे थे, तो जो बनू नज्जार का एक आदमी था, वारिस उसका नाम था, उसने कहा देखो मैं अभी इसको कत्ल करता हूँ। लोगों ने कहा कैसे? कहने लगा मैं किसी बहाने से जाके इसकी तलवार लूंगा, फिर एक ही वार करके पार लगा दूंगा। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, इधर उधर की बातें करके कहने लगा, आप अपनी तलवार जरा दे मैंने देख ली। आपने उसको दे दी, लेकिन तलवार के हाथ में आते ही उस पर इस ऐसा लर्जा तारी हुआ कि तलवार उसके हाथ में संभल ना सकी, तलवार गिर गई। तो आपने फरमाया, तेरे और तेरे बुरे इरादे के दरमियान अल्लाह हायल हो गया। तो अल्लाह ताला ने जगह जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महफूज रखा, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई। तो वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह हिफाजत करने वाला है आपकी। और देखें जो दीन के काम कर रहे होते हैं और जो हक पहुंचाने वाले होते हैं, वाकई अल्लाह ही उनकी हिफाजत फरमाता है, अल्लाह उनको बचाता है, वरना दुश्मन तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो इन खतरात में अगर अल्लाह ऐसे लोगों की हिफाजत ना करे तो दीन दुनिया के अंदर आगे बढ़ ही ना सके। इन अल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, ऐसे काफिर कौमों को जो मानते ही नहीं है उनको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। जो ऐसे जो कत्ल की तदबीरें कर रही हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाने की तदबीरें कर रही हैं, उनको हिदायत नहीं मिलती। ये पिछली आयत के साथ अगर आप मिला के चलें तो, कुल या अहले किताब, कह दीजिए ए अहले किताब, लस्तुम अला शैइन, तुम किसी चीज पे नहीं हो। क्या मतलब किसी चीज पे नहीं? यानी तुम्हारा कोई मकाम मर्तबा अल्लाह की नजर में नहीं, कोई वैल्यू नहीं है, जिसको हम कहते हैं ना, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह के यहाँ। लस्तुम अला शैइन, कब तक नहीं है? हत्ता, यहां तक, ये नहीं कि हमेशा के लिए कोई वैल्यू नहीं, कोई वजह ही है ना कि कोई वैल्यू नहीं है। जब तक के तो कहीं मुतौरात तौरात को कायम नहीं कर देते, यहां तक कि तुम तौरात को कायम करो तब तक तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। यानी अगर तुम नहीं करते इसको कायम, कायम करने का मतलब क्या, पहले तो अपनी जात पे इंसान कायम करता है ना किसी चीज को, अपने वजूद के ऊपर इसके अहकामात को नाफिज करो, यानी इसके ऊपर अमल करो, फिर उसके बाद अपने इर्द गिर्द वालों पे, फिर उसके बाद अपने माशरे में, यानी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो, इसके मुताबिक फैसले करो। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो उसके मुताबिक फैसले नहीं करता, जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, तो वो काफिर है, वो जालिम है, वो फासिक है। अल्लाह की किताब को नाफिज करना मुआशरे में ये जरूरी है। अल्लाह की किताब उतरी इसलिए है, ये पढ़ पढ़ के ठुमके मारने के लिए नहीं उतरी है, ये पढ़ पढ़ के सवाब लेने के लिए नहीं सिर्फ उतरी है, ये इसलिए कि इसके ऊपर अमल किया जाए, इसको नाफिज किया जाए, इम्प्लीमेंट करें इसको, कि पूरा का पूरा सिस्टम इसके मुताबिक चलने वाला हो, ना सिर्फ ये कि सजाएं इसके मुताबिक हो। जैसे हम पहले सजाएं भी पढ़ चुके हैं, सजाएं भी इसके मुताबिक होंगी, इसके अलावा जो आपकी इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स जो आपके स्ट्रक्चर है, वो भी इसके मुताबिक चलेगा, फिर घरों की जिंदगी है, तलाक है, निकाह है, फिर आपके बच्चों के साथ जो हकूक और ताल्लुकात हैं, फिर इस तरह माँ बाप के जो हकूक ताल्लुकात हैं, इसी तरह और जो हमसाए हैं, इसी तरह और जो लोग आपके माशरे में रहने वाले हैं, जो भी आपके सोशल जो स्ट्रक्चर है ना, वो इसके मुताबिक होना चाहिए, आपका माशरा इस किताब के मुताबिक चलना चाहिए, ये है, इसलिए किताब आती है। इसलिए हमने तो सिर्फ पढ़ा है ना, सोचा है कि रमजान के रमजान में हमने इतनी कुरान खत्म करनी है, ये इसलिए आई है, नहीं, ये जिंदगियों को बदलने के लिए आई है, कि जिंदगियों को मोल्ड करो इसके मुताबिक, जिंदगी में चलो इसके मुताबिक, जिंदगी में जो गाइडेंस लेनी है ना आपने, कि कैसे मैंने चलना है आगे, वो इसके इससे लो, इससे, इस कलाम से, इसके लिए आई है। समझ आई बात? तो उनको कहा जा रहा है, अहले किताब को, तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई स्टैंडिंग नहीं है अल्लाह के सामने, यहां तक कि तुम कायम कर दो तौरात को, वल इंजील और इंजील को, क्योंकि ये दो किताबें इनकी तरफ आई, वमा उन्जिला इलैकुम रब्बिकुम, और जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से, और वो क्या, कुरान, कुरान की तरफ इशारा है। जब तक तुम इनको इम्प्लीमेंट नहीं करते तुम कुछ नहीं हो, यानी किताब के बगैर तुम्हारी अल्लाह के नजदीक कोई वैल्यू नहीं है। हम सोचते हैं ना कि नहीं, मैं तो वैसे ही नेक हूं, उनको किताब पढ़ने की ना जरूरत, ना इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत, हम तो वैसे ही बहुत नेक है। आप अपने आप को बहुत नेक समझते हैं, क्योंकि आप कुरान पढ़ रहे हैं और आप उसको अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप बहुत नेक है, आपको क्या पता होंगे हम क्या हैं, ऐसे सोचते हैं ना, आम माशरे के अंदर यही सोच है ना, जबकि ये आयत क्या कह रही है, लस तुम आला शैइन, यू हैव नो वैल्यू। अगर अहले किताब को ये कहा जा रहा है, मुसलमानों तुम्हारी क्या वैल्यू है अगर तुम कुरान को छोड़ देते हो, उनको तो कहा गया कि तुमने तो तौरात इंजील और कुरान को माना ही नहीं, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम इनको कायम करो, सिर्फ मानना नहीं, ईमान लाना नहीं, कायम करो इसको। कायम करना क्या होता है, यानी इसको प्रैक्टिकली नाफिज करके दिखाओ। अच्छा, दुनिया में हम रोते तो हैं, किसी मुल्क में नहीं कायम, किसी जगह पे नहीं कायम, तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये एक जिस्म तो मेरा है ना, इसके ऊपर तो मैं कायम कर सकती हूँ कि नहीं, इसमें तो कोई पाबंदी नहीं है ना, ठीक है हम दुनिया में नहीं कर सकते, हमारा नहीं है जोर, लेकिन जिधर जोर है उधर कायम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, सवाल ये है, या उधर भी छोड़ा हुआ है अब बस रोते हैं, हाय ये वहां पे नहीं कायम, हाय हमारे मुल्कों में नहीं कायम, हाय होनी चाहिए, हाय इस किताब के मुताबिक फैसले होने चाहिए, शरीयत होनी चाहिए फलां। तो आपकी अपने वजूद को कौन रोक रहा है? यहां पे भी क्या कोई रुकावट है? तो देखें, कायम करने में स्टेजेस हैं, अपनी जात से फिर आगे 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 जाती है बात, समझ आई? अगर पूरी दुनिया देखें इस किताब पे चलने शुरू हो जाए और मैं ना चलूं, मैं फिर भी नुकसान में, और पूरी दुनिया ना चले लेकिन मैं चल रही हूं ना उसके ऊपर, तो फिर भी कहीं अल्लाह के हाँ कोई हम कहने के काबिल होंगे कि अल्लाह मेरा तो इतना ही बस था, जितना बस था मैंने उतना कर लिया। आज समझ आए? तो उनको कह दिया गया यू हैव नो वैल्यू। अब मेरे और आपसे सवाल है, हमारे लिए क्या ये कहा जा सकता है कि हम किताब पर अमल करने को तैयार हैं और अपनी तरफ से कोशिश में लगे हैं, या फिर सिर्फ पढ़ पढ़ के सर्टिफिकेट हैं? तो यू हैव नो वैल्यू जब तक तुम कायम ना करो किताब को। अब समझ आई किताब की अहमियत कितनी है? कितना ज्यादा ये सूरत हमें बता रही है कि किताब 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 की अहमियत, इस किताब को पहुंचा देना, यानी जो भी अल्लाह ने नाजिल फरमाया है वो किताब है, हदीस है, वो भी अल्लाह की तरफ से वही है, यानी जो भी अल्लाह की तरफ से आया है, मां मुंजिला है इलैका या इलैकुम, कितनी दफा आ चुका है, कितनी दफा हम ये पढ़ चुके हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना, इसके मुताबिक फैसले करना, इसको लागू करना, इसके मुताबिक अपनी सोसाइटी को लेकर आओ, लेकिन इसको मानने को कितने लोग तैयार हैं? अल्लाह ताला तो कहता है मतलब यहकुम बिमा अनजल अल्लाह फौलाएकुम, जो नहीं इसके मुताबिक फैसले करेगा जो अल्लाह ने नाजिल किया वो जालिम है। यानी अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली बात कितने टाइम्स आ चुकी है इस सूरत में, फिर भी अगर हम टस से मस ना हो, फिर भी क्या हमें अहमियत नहीं पता चली अभी तक कि इसकी कितनी ज्यादा वैल्यू है? फिर भी हम कहें इसको पढ़ना फर्ज है क्या? ये कुरान को पढ़ना समझना फर्ज है क्या? कहाँ लिखा है जी फर्ज है भाई? तुम इसको समझोगे ही नहीं, अगर इसको पढ़ोगे ही नहीं तो किधर इंप्लीमेंट करोगे, किधर कायम करोगे इसको, जब तुम्हें पता ही नहीं इसमें है क्या? तो कायम करने के लिए जरूरी है कि इंसान समझे कि इसका पैगाम क्या है, ये मुझे क्या बता रही है। अगर मैं आपको कहूं कि उन्जिला इलैका या उन्जिला इलैकुम इस सूरत में से आप निकालें तो आपकी एक लिस्ट बन जाएगी, और फिर क्या क्या इसके आगे हुक्म दिए गए कि इसको के साथ करना क्या है, तो कहीं पे आप ये नहीं देखेंगे कि वहां पे लिखा हुआ है कि उन्जिला इलैका या उन्जिला इलैकुम, तो उसके बाद बस उसको पढ़ते रहना, सवाब बहुत मिलेगा। जो उन्जिला इलैकुम है ना, बस उसको फिर उसके तावीज बना बना के गलों में पहनते रहना, तुम्हारी हिफाजत होगी। उन्जिला इलैकुम जो है ना, उसको बस दुल्हनों के सर पे रख के तो उनको रुखसत किया करना। बताएं कहाँ पे लिखा हुआ है, कोई हमें भी पता चल जाए। उन्जिला इलैकुम है ना, फिर इसको घरों के अंदर पढ़ लिया करना, बस पढ़ पढ़ के खत्म करते रहा करना, और करना कुछ ना, लेकिन ये कहाँ पे लिखा हुआ है? और प्रॉब्लम ही है इम्प्लीमेंटेशन। पढ़ना तो बड़ा आसान है जनाब, हम हर महीने कुरान खत्म कर सकते हैं आसानी से, हम हर रमजान में 2-3 कुरान खत्म कर सकते हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन किधर है? प्रॉब्लम ही वहां है। उसमें तो साफ ही कह देते हैं हमने अमल नहीं करना, ना हमसे होता है अमल, वो बड़ा मुश्किल काम है, तो इसका तो मकसद ही है। वला यजीदन्ना कसीरम मिनहुम्मा उन्जिला इलैका मिन रब्बिका तुग्यानम व कुफ्रा। बजाय इसके कि ये कायम करते हैं इसको, उल्टा इनका हाल क्या है कि इनमें से अक्सरियत, बहुत सारे, कसीर तादाद इनकी, उसको बढ़ाता है, ज्यादा करेगा। क्या ज्यादा करता है? ये कुरान मा उन्जिला इलैका, जो आप पर नाजिल किया गया, और वो कुरान है ना, ये कुरान इनको, और हदीस भी है, ये इनको जो अल्लाह की तरफ से वही आई है आपके ऊपर, वो इनको ज्यादा करती है किसमें? आप क्या सोचते हैं किसमें ज्यादा करना चाहिए? करना तो चाहिए हिदायत में ज्यादा, मगर करती किसने? तो गयान व कुफर, तो गयानी में और कुफर में, यह बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सरकशी इनकी और बढ़ती है, कुफर इनका और बढ़ता है। मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि उसके अंदर ये नहीं है कि आप ये कहें कि इसमें कुरान का कोई कसूर है। लोग कुरान को कहते हैं, लो जी हमने बड़े देखे हैं कुरान पढ़ने वाले, कुछ नहीं होता। ओ भाई वो कुरान का नहीं कसूर है, वो लोगों का कसूर है। अगर वो लोग नहीं अपने किरदार को सही कर रहे, उनके अपने अंदर बीमारी है, तो कुरान का क्या कसूर है? इसी कुरान से वो लोग सहाबा कराम बन गए, रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन बन गए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे वो अशरा मुबशरा में से हो गए। उनको दुनिया में बशारतें जन्नत की मिल गई, इस कुरान से मिली ना। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले भी उसी मुआशरे में रहते थे, जब वही नाजिल हुई है तो तब वो बने ना सहाबा, तब अल्लाह उनसे राजी हुआ ना, क्योंकि उन्होंने इस वही को, इस इल्म को अपने सीने से लगाया और इसको इंप्लीमेंट किया, इस पे अमल करके दिखाया। तो ये ही है जो जिंदगियां बदल देता है। अगर किसी की जिंदगी नहीं बदल रही तो खुदा के लिए कुरान को इल्जाम ना दो। बड़े देखे हैं जी कुरान पढ़ने वाले, कुरान का कसूर नहीं। आप दे ये कह सकते हैं, बड़े देखे हैं ऐसे मैले दिलों वाले, बड़े देखे हैं ऐसे बीमार दिलों वाले, ये कह सकते हैं, मगर कुरान, इस कुरान का असर देखो। अगर देखना है ना तो देखो फिर उमर रजी अल्लाह तआला को, कि तलवार लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जा रहे हैं, और क्या सुना था उन्होंने, जो दिल ही बदल गया, दुनिया ही बदल गई। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि उमर जहां से गुजरता है शैतान वहां से रास्ता छोड़ देता है। ओ सुभान अल्लाह, फिर वो बने। तो ये कुरान में तासीर है, ये है जो इंसान को वो करा देता है जो वो कभी सोचता भी नहीं। कहता मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं ये कर सकती। वही इंसान, आप में से भी बहुत सारे लोग गवाह होंगे इस बात के कि इस कुराने पाक को पढ़ने से पहले आपकी जिंदगी क्या थी, और आज वही काम लगते हैं। आए हम कितने बेवकूफ थे, मैं क्या किया करती थी, मैं कितनी पागल थी। अब वो चीजें अच्छी ही नहीं लगती, अब वो चीजें अजीब सी लगता कि मैं क्या करती होती थी। किसने बदला? इस कुरान ने। तो ये वाकई दिलों पे असर करता है, ये ऐसे इंसान को आहिस्ता आहिस्ता करके मोल्ड कर देता है कि उसको पता भी नहीं चलता। आप ये सफर शुरू करते हैं कुरान का पहले पारे से, जब 30वें पारे में पहुंचते हैं तो जिनके दिल वाकई जमीन उनके दिलों की जरखेज होती है, नरम होती है ना, सख्त नहीं होते, तकबर नहीं होता, बड़ाई नहीं होती, उनके दिलों से फिर वाकई वो फूल खिलते हैं, कि जिनकी खुशबू से उनका सारा माहौल महक जाता है। हाँ वो ऐसे होते हैं जैसे नूर लेकर चल रहे हैं, वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी रोशन कर देते हैं। और बाज लोग ऐसे होते हैं कि उनकी तो और सरकशी बढ़ जाती है, और कुफर बढ़ जाता है। वो कुरान को पढ़ते हैं, आप देखते हैं कई प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, वो गैर मुस्लिम, अब उन्होंने कुरान भी पढ़े हुए हैं, इस्लाम के ऊपर इतनी रिसर्च भी की हुई है, और क्या क्या, लेकिन क्या उनको हुआ? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। तो कोई है जिनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और कोई ऐसे हैं जिनका कुफर और ही बढ़ जाता है, कि वो इसी कुरान से ऐसे शोशे निकालते हैं, ऐसी बातें निकालते हैं, देखो जी ये देखो जी ये, ऐसी बात, ऐसी ऐसी बातें ला ला के लोग करते हैं, तो उनकी सरकशी और बढ़ जाती है, वो और ही भटक जाते हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह इस कुरान को हमारी हिदायत का जरिया बना दे, ऐ अल्लाह हमारे दिलों को बदलने का जरिया बना दे, ऐ अल्लाह हमारी जिंदगियों को इसके मुताबिक ढलने की तौफीक हमें अता फरमा, कि हम ढाल लें अपनी जिंदगियां इसके मुताबिक। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, नबी फला तसाल कौम काफिरीन, ऐ मेरे नबी आप ना अफसोस करें इन काफिर कौम पे कि ये नहीं मान रहे, क्योंकि देखें एक बंदा अपनी पूरी जान लगा रहा है बताने में, और उसको पता है कि ये हक है, और उसको पता है कि अगर ये नहीं माने तो इनका अंजाम क्या होगा। वो तो देख आया हुआ है जहन्नुम को, देख आया हुआ है वो बंदा, मेराज पे देखा नहीं था क्या आप? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो दर्द होता था ना कि ये अगर ये ना बाज आए तो इनका क्या हाल होगा, क्यों नहीं ये मान जाते, वो जो आपके अंदर खैर ख्वाही थी, जो तड़प थी, जो शफकत थी, इतनी ज्यादा थी कि अल्लाह ताला बार बार कुरान पाक में फरमाते फला अल्लाह का बाकी नफ्स आला आसारे इल्लम यूमिनु बिहादल हदीस, ए नबी, आप अपने आप को क्या हलाक कर देंगे इनके पीछे। ये होती है अंबिया की तड़प, ये होती है अंबिया की मोहब्बत और शफकत अपनी उम्मत के साथ। तो सूरत बकरा में हम इससे सिमिलर आयत पढ़ चुके हैं, और यही आयत लेकर बहुत सारे लोग, बल्कि एक दफा मेरे पास भी कोई आई थी, उसने कहा कि जी ये आयत लेकर तो मेरे हस्बैंड ने कहा जब सारों ने चले जाना है जन्नत के अंदर और सबके लिए कह दिया गया, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो साबी है, मुसलमान है, कोई भी है, जब सबने चले जाना है बस अल्लाह पर ईमान रखने से और आखरत पर अच्छे काम करने से, तो फिर क्या है। और वो रिवर्टेड था बंदा, तो मैं तो फिर अपने वापस उस पर जाता हूँ, तुम्हारे तो कुरान में ये लिखा। तो देखें इस आयत को बहुत समझने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी अच्छे काम करेगा, जैसे आज आजकल लोग कहते हैं ना ये सभी ठीक है, कोई मसला नहीं है, बस कोई अल्लाह को मान रहा है, आखरत को मान रहा है, अच्छे अच्छे काम करें आप तो बस ठीक है, आपका किरदार अच्छा होना चाहिए, आपका देखिए अखलाक अच्छा होना चाहिए, बाकी आप अल्लाह को मानते हैं तो ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल्लदी नफसी बियदी, वो जात जिसके हाथ में मेरी जान है, कसम है उस जात की कि इस उम्मत के किसी शख्स के कान में भी मेरी बेसत की खबर पड़ गई तो चाहे यहूदी हो या ईसाई हो, फिर वो मुझ पर अगर ईमान नहीं लाता तो वो जहन्नुम में जाएगा। और मैंने आपको बताया ना उम्मत में फिर क्या, सारी उम्मत ही यानी जिसके कान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर पड़ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं वो आ गए हैं, आ चुके हैं, फिर भी वो ईमान नहीं लेकर आता तो वो जहन्नमी है। इससे वाजे ज्यादा क्या हदीस हो सकती है। तो फिर इस आयत का क्या मतलब है कि भाई ये ईमान लाए जो, देखिए एक तो सबसे पहली बात ये कि बाज लोगों ने ये समझा था कि अगर कोई यहूदी है या ईसाई है या जो भी साबी है तो वो फिर क्या, अगर वो मुसलमान हो जाता है तो उसका क्या है, तो बता दिया गया कि चाहे ईसाई है यहूदी है वो भी ईमान ले आता है तो उसके लिए भी ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून है, वो खुशखबरी है, बस ईमान लाए अल्लाह पर, आखरत पर और नेक अमल करें। दूसरी बात ये कि ये हर जमाने के अपने जो उनके जमाने में थे, यानी अब इस्लाम तो बाद में आया, अब इनसे पहले जो यहूदी थे और जो क्रिश्चियन थे और वो थे उनका क्या होगा, अब तो इस्लाम आया, अब तो इस्लाम की दावत आ गई तो उनका क्या बनेगा फिर। तो उन अपने जमाने में जो भी कोई अल्लाह पर आखरत पर ईमान रखता हो और साले अमल किए हो, उसने अपने नबी पे उसने ईमान रखा था, अपने जमाने के नबी के ऊपर उसने उनकी तालीमात के मुताबिक चला था, वो भी उनमें से होंगे जो ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। आप देखें ना जन्नत के अंदर क्या आप समझते हैं सिर्फ उम्मत मुस्लिमा होगी, नहीं, उम्मत मुस्लिमा के अलावा और भी उम्मतें होंगी, वो कौन होंगी फिर, वो ईसाई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ईसाइयत के ऊपर जो ईसा अलैहि सलाम लेकर आए थे उसके ऊपर ईमान रखने वाले थे, उनकी तालीमात के मुताबिक चलने वाले थे, वो यहूदी जो आप देखें मूसा अलैहि सलाम के वक्त में भी ऐसे लोग थे जो कि सही रास्ते के ऊपर थे, जो उनके मानने वाले थे, मानने वाले ही नहीं थे सिर्फ बल्कि सही मानने वाले थे, उनकी तालीमात के मुताबिक चलने वाले थे, तो उनका क्या बनेगा फिर। इस्लाम तो बाद में आया, और साबी कौन होते हैं। अच्छा साबी के बारे में ना आप देखेंगे बहुत सारी तफसीरों में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि साबी फलां फलां साबी होते हैं, ये होते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये बताती हूँ कि साबी क्या कौन है। ये अल जजीरा के ऊपर इनके बारे में पूरी प्रोग्राम आया था, उससे ही मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि ये कदीम तरीन अहले किताब है साबी जो, और इनके बारे में काफी चीजें तफसीरों में लिखी हुई है कि ये सितारों को पूजने वाले, ये ऐसे वैसे, उस उनकी ऑथेंटिसिटी किसी की भी नहीं पता हमें। साबी दुनिया की सबसे कदीम तरीन यानी उम्मत है समझ ले, सबसे कदीम तरीन ओल्डेस्ट एंशंट रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो आदम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, उस वक्त आसमानी मजहब में साबी जो थे सबसे छोटा, इस वक्त जो है सबसे छोटा ग्रोह रह गया। यहूदियों की तरह इनके मजहब में भी कोई दाखिल नहीं हो सकता। और ये इस वक्त कहाँ पे है दुनिया में? इराक में है, दजला के किनारे ये आबाद है। अपने रसूम और रवाज बहुत इनके और इबादात और इनके तरीके इनके बहुत ही अलग थलग हैं, और काफी हद तक ये उनको छुपाते भी हैं। इनके मजहब में पानी को बहुत अहमियत दी जाती है। और इनका जो लिटरेचर है ना, जो इनका रिलीजियस लिटरेचर है, ये मैं आपको बात बता रही हूँ, आप लिख लेंगे सारी बात, क्योंकि ये मैं आपको फिर कहीं और से मिलेगी नहीं। इनका जो लिटरेचर है वो आरामी जुबान में है, कोई आर्मेनियन लैंग्वेज होगी शायद। और इनकी जो दीनी किताबें हैं उनका दूसरी जमानों में तर्जुमा ना होने की वजह से ज्यादातर हिस्सा जाया हो चुका है। इनके जो आज ये लोग हैं ना, इनकी जो जिस लैंग्वेज में इनकी किताबें वगैरह हैं, उनके जानने वाले सिर्फ 10 10 इनकी मजहबी शख्सियात हैं जो रह गई। और उन्होंने कहा कि इस दफा हमारी ईद भी जो है कोरोना की वजह से हमारी ईद भी फीकी पड़ गई, हमारी इबादत गाहों के अंदर ही हमें सारी रसूमात करनी पड़ी, और वरना हम बड़ी कोई और तरह करते थे ये अपनी ईद वगैरह पे। और इन्हीं के मजहबी रहनुमा हैं जिन्होंने कहा कि दुनिया का सबसे कदीम मजहब हमारा है, और आज बहुत ही कम लोग इसके रह गए। इसकी वजह क्या है? वो जो इनकी किताबें थी जो मैंने अभी आपको बताया ना, बल्ले हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं फरमाया, आगे पहुंचाओ। देखिए इनकी जो किताबें थी वो दूसरी जुबानों में कोई तर्जुमा ही नहीं हुआ, वो कोई और जान ही नहीं सका, उनकी उसी लैंग्वेज में ही रही। और वो कहते हैं कि हम तौहीद वाले हैं, वो कहते हैं हम सबसे पक्के मुवाहिद हैं, और हमारे आबाओ अजदाद फलस्तीन से आए थे और यहाँ दजला के किनारे आके आबाद हुए थे, लेकिन हमारी किताबें ही जाया हो गई। और वो कहते हैं हम आखिरी नबी जिसको मानते हैं वो यहया अलैहि सलाम है, यहया बिन जकरिया। और ये सफेद लिबास पूरा का पूरा वाइट पहनते हैं, ये इनकी पहचान है। और कहते हैं कि हमारे पास आदम अलैहि सलाम पे जो नाजिल शुदा सहायफ थे उनका मजमुआ है, हमारा वो पहला था और उसके बाद और भी कई चीजें इनके पास हैं। तो आज भी ये अपनी रसूमात में, अपने रिवाज में बहुत सख्ती से अमल करते हैं, ऐसे नहीं जैसे दूसरे लोगों ने अपने दीन ही छोड़ दिए हैं ना, तो ये लेकिन बहुत सख्ती से अमल करते हैं। इनकी मजहबी ओहदे पे फर्स्ट टाइम एक औरत फाइज हुई जिसका नाम नादिया है, वो कहने लगी कि हमारे बारे में लोग अजीबोगरीब बातें करते हैं कि हम सितारों को पूछते हैं, ये गलत है, और हमारा किबला नॉर्थ की तरफ है तो हम उसकी तरफ रुख करके इबादत करते हैं, इसलिए लोगों को गलतफहमी हुई है कि हम सितारों की इबादत करते हैं। बाज लोग कहते हैं कि साबी मुर्दार जानवर खाते हैं, वो कहती है ये सारी बातें गलत हैं। कहने लगी कि साबी मजहब के भी इस्लाम की तरह 5 अरकान है, तौहीद, नमाज, सदका, रोजा, ठीक है, और इनके रोजों की भी अजीबो गरीब बातें हैं, कुछ कोई रोजा ऐसा जिसमें गोश्त नहीं खाना, कोई रोजा किसी और तरह का ऐसे है। तो इनके कई लोगों ने कहा कि चूंकि हम बहुत ही एक ऐसी रिमोट सी जगह पे रहते हैं ना, तो हमारे कई लोग यहाँ से दूसरे मुल्क हिजरत करने पे मजबूर हो गए, और इराक ईरान जंग में भी फिर माइग्रेशंस होती रही। तो कहती कि अब हमारे मजहब के अंदर सिर्फ इतने लोग रह गए कि उनको उंगलियों पे गिना जा सकता, तो अगर यही हमारा सिलसिला रहा तो फिर हमारी तो हम तो खत्म ही हो जाएंगे दुनिया से। तो ये थोड़ा सा आपको बताना चाह रही थी कि साबी लोग कौन है। तो ये इतने पुराने मजहब वाले हैं, तो अरब में भी साबी उसको कहा जाता था जो अपने दीन से हट जाए, उसको साबी कहते थे। तो अब हमें थोड़ा सा इनका पता चला कि ये आज दुनिया में किस तरह से रह रहे हैं। अब चाहे यहूदी है, चाहे साबी है, चाहे नसारा में से कोई है, सब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर पहुंच चुकी है। कोई आज ये नहीं कह सकता कि हमें तो पता ही नहीं इस्लाम क्या चीज है, वो नहीं। उस औरत ने खुद कहा कि इस्लाम में जैसे अरकान है इसी तरह हमारे भी, इसका मतलब इतना तो नॉलेज है कि इस्लाम एक है मजहब। तो इनको सबको पता चल चुका है हाँ, बाज लोग ये क्वेश्चन करते हैं, देखें जी अगर किसी को ना पता हो, वो किसी जंगल में बैठा हो, तो हमें लोगों की बहुत फिक्र हो जाती है ना, कि दूसरों का क्या बनेगा क्यामत के, अपनी नहीं हमें इतनी फिक्र, ओ भाई उनका क्या बनेगा जिन तक पैगाम ना पहुंचा, पर फलाने का क्या बनेगा, हाँ मतलब दूसरों की फिक्र से ज्यादा पहले अपनी फिक्र करो कि हमारा क्या बनेगा। तो अब वो जी क्वेश्चन है कि वो जो इस जंगल में ऐसा बैठा हुआ है कि वो दुनिया से ही कहीं पता नहीं कहाँ कौन सी जगह में होगा जहां पे कोई पैगाम नहीं पहुंचा, तो उसका मामला अल्लाह के साथ है, अल्लाह ताला कयामत के दिन भी कई लोगों को टेस्ट करेगा वहां पे जिन तक कोई पैगाम नहीं पहुंचा। तो वो अल्लाह, याद रखिए अल्लाह ताला जुल्म करने वाला नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत वो है जिससे ज्यादा इंसाफ वाला कोई नहीं। आप क्या समझते हैं उसकी मखलूक है तो वो ऐसे ही उनको आग में डालता जाएगा। तो आप लोग ना परेशान इस बात पे हुआ करें कि वो उनका क्या होगा, अगर परेशान होना है तो इस बात पे हूं कि मैं उन तक पैगाम पहुंचाऊं, ना कि इस पे कि अब वो क्यामत के दिन उनके फैसले क्या होंगे। ठीक है, तो अब जो ऐसे लोग हैं उनमें से जो भी अल्लाह पर आखरत पर ईमान रखता है, साले अमल करता है, उनको भी फला खौफ अलैहिम, उनको भी कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। खौफ किस चीज का होता है, क्या है अब क्या क्या मेरे साथ हो जाएगा, खौफ आगे का होता है ना, फ्यूचर के खौफ होते हैं, खदशात होते हैं। गम किसका होता है, फ्यूचर का गम नहीं होता, फ्यूचर का भी आया ही नहीं, गम हमेशा पास्ट का होता है कि मेरे साथ पास्ट में जो मैंने कर दिया। तो अब उनको वहां पे कोई खौफ नहीं होगा कि हाय अब हमारे हमने तो हम तो कुछ लेकर नहीं आए, और ना ही कोई गम होगा इस चीज का कि हमने दुनिया में कोई भी कुछ किया है, हम भी कुछ इकट्ठा कर लेते अपने लिए। क्योंकि तो बहुत सारे लोग उस दिन गम का शिकार होंगे, कैसे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैंने किधर अपना टाइम लगा दिया, मैं क्या करती रही, मैंने क्यों उन एक्टिविटीज में अपने आप को भुलाया जिनका कोई हासिल नहीं है आज, तो कितना गम होगा। और खौफ इस बात का होगा मैं क्या जवाब दूंगी अल्लाह को, अब मैं कैसे अल्लाह का सामना करूंगी, ये तो दिन आ गया। तो ऐसे भी लोग होंगे, और ये भी लोग हैं जिनका कोई खौफ और गम भी नहीं होगा, क्योंकि कुछ लेकर आए हुए हैं ना, कुछ गठरी में है ना, तो उनको अब खौफ नहीं है ना, उनको पता है कि अल्लाह मैं जितनी तूने मुझे जिंदगी दी मैंने लगा दी, अल्लाह मेरे पास जितनी हिम्मत थी अल्लाह मैंने सारी ताकत सर्व कर दी, अल्लाह मैंने कोई वक्त ऐसा नहीं देखा कि जैसे नूह अलैहिस्सलाम सुभान अल्लाह जब वो सूरह नूह में बात करते हैं तो अल्लाह ताला ने उनकी बातें कैसे बताई ना, अल्लाह मैंने दिन और रात इनको तब्लीग की, मैंने यानी ना दिन देखा ना रात देखी, ऐसे लोगों फिर क्या खौफ होगा, वो तो अल्लाह ताला के सामने जाके कुछ तो कह सकेंगे ना, और जो कुछ भी ना करके आए बस उन्होंने क्या काम किए हैं, यही कमाइयां करनी, खा लिया, पहन लिया, ओढ़ लिया, बैंक बैलेंस बना लिए, जायदादें बना ली, ये कर लिया, उनको तो जाहिर है खौफ ही होना, किधर से कमाया, किधर खर्च किया, किधर वक्त लगाया, क्या करती रही। तो जब ये सवाल होगा पता है आगे सवाल होने वाला है तो कितना खौफ होएगा। अल्लाह हु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, लकद अखदना मीथाक बनी इसराइल, अलबत्ता तहकीक लिया हमने मीसाक बनी इसराइल से, पुख्ता अहद लिया, हम पढ़ चुके हैं सूरह बकरा में कितनी दफा इस अहद की भी बात पड़ी, वो 10 कमेंडमेंट्स जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई थी इनके ऊपर मूसा अलैहि सलाम पे, सूरह बकरा आयत 83 में हम पढ़ चुके हैं, ये सारे अहद थे ना, अहद लिया था कि तौरात को मजबूती से पकड़ना है, इसके ऊपर अमल करना है, तो वो सारी हम तफसीलात सूरह बकरा में देख चुके हैं। तो लकद अखदना मीसा का बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल से अहद लिया, वह अरसलना इलेहिम रसूला, और इनके अंदर रसूल भेजे, यानी टाइम टू टाइम रिमाइंडर के लिए इनमें अल्लाह ताला ने रसूल भी भेजे जो आके इनको याद कराते रहे कि देखो इस अहद पे चलना है, तुमने तुमने अल्लाह से मुआहिदा किया हुआ है। कुल्ला मन जाए अहम रसूल, अब मुख्तसरन यहाँ पे बात की गई, इन्होंने क्या रिएक्ट किया, ये किया, वो वाली बात नहीं, यहाँ पे एक और बात की तरफ तवज्जो बताई जा रही है कि जब रसूलों का सिलसिला आता रहा ना, तो जब भी इनके पास कोई रसूल आता था, बीमा लाता हुआ अनफुसुहुम, उस चीज के साथ जो ये नहीं पसंद करते थे इनके नफ्स, जिसको इनके नफ्स पसंद नहीं करते, क्या चीज होती थी जिसको इनके नफ्स नहीं पसंद करते थे, यानी जाहिर है आप देखें इस बात को इस तरह समझिए, नफ्स को कौन सी चीजें पसंद आती हैं, नफ्स को वो पसंद आती है जो मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूं, लज्जतें, ख्वाहिशात, सोना, खाना, पीना, फ्रीडम, बस यही करते रहो कि कुछ ना करो, आप आराम करो, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो, बस ये नफ्स चाहता है ना, जब अंबिया पैगाम लेकर आते थे ना अल्लाह का, तो वो क्या पैगाम लाते थे? खुद सोचें, जैसे आप तक पैगाम आया, वही आई, तो वो जो पैगाम होता था ना, उसके अंदर एक समझ लें, एक रिस्ट्रिक्टेड लाइफ की तरफ बुलाया जाता था कि तुम्हें अल्लाह की मान के चलना है, ये अपनी मर्जियां करने के लिए जिंदगी नहीं है, ठीक है? तो अब क्या होता था, जब रसूल आते थे वो चीजें लेकर जो उनके नफ्स पसंद नहीं करते थे, उनकी मर्जी के खिलाफ होती थी वो चीजें, वो जिस तरह की आजादियां चाहते थे, वो जिस तरह की मनमानियां चाहते थे, उसके खिलाफ होती थी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल वो। अब क्या होता था, वही और ख्वाहिशे नफ्स, इसमें क्लैश होता था। जब भी नबी आए, वही लेकर आए जो लोगों की ख्वाहिशात के खिलाफ होती थी, क्योंकि इंसान के अंदर शर भी है ना, उनकी इकोनॉमी को हिट करती थी, उनकी सोशल सिस्टम को हिट करती थी, उनकी बहुत सारे उनके मामलात, उनके निजामे जिंदगी जो ख्वाहिशात के ऊपर बेस करता था, उसको हिट करती थी, उसको अटैक करती थी कि ये सही नहीं है। जैसे हमने पहले पढ़ा, क्या खाते थे वो, हराम सख्त। फिर हमने ये पढ़ा कि वो किस चीज के शैदाई थे, झूठ के, झूठ सुनने के, झूठ फैलाने के। ये चीजें जो थी, जो माशरे की बुराइयां थी, उनसे रसूल आके मना करते थे। आप अब कई रसूलों के वाकयात इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। शुएब अलैहि सलाम आए, उन्होंने कहा बदियानती बंद करो, ये क्या तुमने किया हुआ। हूद अलैहि सलाम आए, उन्होंने क्या कहा। सालेह अलैहि सलाम आए, उन्होंने क्या, कैसे 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 उन्होंने इनको समझाया। तो वो तो ये मानना नहीं चाहते थे, ये तो उनकी ख्वाहिशात के खिलाफ थी बात। इंसान के नफ्स को कहाँ अच्छा लगता है कोई मुझे डिक्टेट करे, कोई मुझे बताए कि ऐसे चलो ऐसे ना चलो, ऐसे करना ऐसे नहीं करना, ये बुरा है ये अच्छा है। मुझे नहीं कोई बताए, मेरी अपनी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, कौन होता है हमें कहने वाला। अपने पास रखो अपना दीन, हमें सब पता है। तो वो तो नफ्स नहीं चाहता कि ये कबूल करे। और ये देखें कि एक्चुअली इनफैक्ट इसी रिस्ट्रिक्टेड लाइफ का ही तो हम सौदा करते हैं। हम अल्लाह से, अल्लाह ताला हमें ऑफर करता है कि जो मैंने नाजिल किया इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। इंसान के पास टू चॉइसेस हैं, या तो वो ये कहे मैं नहीं गुजारता, मैंने नहीं ये मानना, मैंने वो करना जो मेरी मर्जी है। दूसरी चॉइस है इंसान क्या कहे, मैं अपनी जिंदगी को मुकय्यद करने को भी तैयार हूं, रिस्ट्रिक्ट करने को तैयार हूं। जैसा मेरे मालिक ने हुक्म दिया मैं वैसा ही करूंगी, मेरी मर्जी वो ही है जो मेरे रब की मर्जी है। इसके ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा फरमाया है, समझ आई? जन्नत मिलनी इसी के ऊपर है कि आप उसके मुताबिक आ जाओ जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया। आप अपनी मर्जी को ढाल लो अल्लाह की मर्जी में, ये नहीं कि मेरी मर्जी और एक तरफ और अल्लाह की मर्जी दूसरी तरफ, नहीं, मेरी मर्जी बस वही है जो अल्लाह की मर्जी है। ये है वो सौदा जो कर लेगा इस दुनिया में वो जन्नत पा लेगा। लेकिन जब पैगंबर आते थे, जब पैगाम देते थे बनी इसराइल को, और उनकी जिंदगियों से टकराता था उनका पैगाम, वो कुछ कह रहे हैं, इनकी जिंदगी कुछ और है। अब मसलन हमारे मुल्क में चले जाए और लोगों को कहना शुरू कर दे, भाई झूठ बंद करो, ये धोखेबाजियां बंद करो, ये फ्रॉड बंद करो, ये करप्शन बंद करो, ये रिश्वत बंद करो, ये बेईमानियां बंद करो, ये मिलावटें बंद करो, उनको अच्छा लगेगा क्या? जिनका कारोबार ही इसके ऊपर चलता है, वो दुश्मन होंगे कि नहीं होंगे बताएं? वो कहेंगे हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी, हमारा तो बिजनेस ही नहीं चलेगा, हम बच्चों की फीसें कहां से देंगे, हम खाएंगे कहां से, ये कहां से हमारे अपने दीन लेकर आ गए, रखो अपने पास अपना दीन। आप कहें जाके कि जुल्म और बर्बरियत बंद करो, ये जो बड़े बड़े वडेरे बन के बैठे हुए और जुल्म कर रहे हो ये बंद करो, किसको अच्छा लगेगा? वो कहेंगे नहीं, इसको रास्ते से हटाओ जरा। आप जाके कहें लोगों को कि ये सूद का निजाम बंद करो, आप लोगों को कहें जरा कि ये इस किस्म की बेहयाई बंद करो, ये जो फहाशी हो रही है इसको बंद करो, ये बेहयाई के प्रोग्राम, ये बेहयाई के लिबास, ये बेहयाई की सारी जो चीजें हैं ये बंद करो। सोसाइटी आपको हार पहनाएगी क्या? नहीं, खिलाफ हो जाएगी ना। बस इसी मॉडल को सामने रख के समझें कि जब रसूल आते थे एक करप्ट सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी का हाल क्या हो जाता था, बजाय इसके कि उनकी बात को माने और सुने कि ये सही कह रहे हैं, हमें अपने आप को सही करें, वो उनके दुश्मन हो जाते थे, उनके बैरी हो जाते थे। तो ऐसे ना सोचेंगे, पता नहीं वो उठते थे ऐसे ही, उनको एक दिन ख्वाब आ जाता था तो उठते थे, अगले दिन किसी नबी को कत्ल कर देते थे या उसके खिलाफ हो जाते थे, ऐसे ही हो जाते थे। खुद अपने ऊपर रख के देखिए, अपने माशरे के ऊपर, तो कोई ऐसा कहने वाला खड़ा हो जाए, कहे लोगों को नमाजों के लिए खड़े हो, मस्जिदों को आबाद करो, ये सारे गलत काम छोड़ो, तो कौन उसको फेवर करेगा? औरतों को कोई कह दे कि तुम भी पर्दे शुरू कर दो, तो देखो नहीं औरतें क्या करेंगी। आप खड़े होकर कहें जो मेरा जिसम मेरी मर्जी वाली औरतें, उनको आप कहें कि जिन्हें ये काम गलत है, तो वो क्या क्या इस चीज को बहुत पसंद करेंगी, तारीफ करेंगी। तो ये चीजें उनको बुरी लगती थी कि हमें क्यों कहते हैं ये। तो अब क्या करते थे वो, क्या उनका जवाब होता था? फरीकन कद्दबू और फरीकन यकतबून। एक ग्रोह को तो वो जुटला दिया, एक नबियों, या नबी एक थोड़ी आए, बहुत सारे रसूल आए, बहुत से नबी आए। रसूल भी जब कहा जाता है तो नबी ही मुराद होता है, अगर एक नबी कहा जाए या रसूल कहा जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो फरीकन कद्दबू, एक ग्रोह को, एक रसूलों के ग्रोह को उन्होंने जुटला दिया, हम नहीं मानते, तुम झूठे हो, तुम कजाब हो। और एक फरीक को तो जब वो नहीं हटे इनको बताने से, उनको बताते जाते थे बाज आ जाओ बाज आ जाओ, वो अल्लाह का अजाब आ जाएगा, को खुदा का खौफ करो, उनको ऐसे ही हर रास्ते से हटा दिया, उन्होंने कत्ल ही कर दिया उनको। जब इंसानों की जिंदगियां सिर्फ ये हो जाए ना कि हमने बस अपनी मर्जियां करनी है, अल्लाह का दीन जो मर्जी कहता रहे, हमने तो चलना उसके ऊपर ही जिसको ऊपर हमारा दिल करता है, जिसमें हमें दुनिया का फायदा नजर आता है, जो हम समझते हैं कि ये ठीक है, तो फिर ऐसे लोगों को कौन समझा सकता है जिन्होंने ठान ली हो कि बस हमने ऐसे ही चलना, कौन समझा सकता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आप उनको जो मर्जी कह दे, उन्होंने नहीं मान ली, तो उनको बात वही पसंद आती थी जो उनकी मर्जी की होती, और अंबिया आके उनकी मर्जियों के खिलाफ बातें करते थे। जाहिर है कि करप्ट सोसाइटी थी, उनको मोहब्बत से तो नहीं कहेंगे कि हाँ भाई तुम करते रहो जो कर रहे हो, जन्नत में जाओ, तो उनको कहने वाला ही बुरा लगने लगता था। अल्लाह अकबर। तो आज के दौर में भी अगर अंबिया होते तो शायद हमारे माशरों में भी यही हाल हो रहा होता। आज क्या उलमाए हक को कत्ल नहीं कर देते, उनको धमकियां नहीं देने लगते, बाज आ जाओ वरना तुम्हें रास्ते से ही हटा देंगे, तो उम्मत मुस्लिमा ने काम नहीं करना था। आज नहीं क्या उलमाए हक को जेलों में डाल के रखा हुआ, इसलिए ना सिर्फ कि वो कहते हैं कि ये गलत कर रहे हो, तुम हुक्मरानों को कहते हैं तो वो उठा के उनको जेल में डाल देते, और ऐसे वाइब करते हैं, उसके बाद उनका नामो निशान पता नहीं, मार ही देते हैं। तो इन्होंने भी अपने, अगर नबी आज कोई आ रहा होता तो इन्होंने उनके लिए भी कोई काम नहीं करना था। तो ये उनकी, देखिए उनकी बातें बताई जा रही हैं आज, ठीक है अंबिया नहीं है, लेकिन उलमाए हक की बात ही सुन लो, कौन सुन रहा है? उनको इतना बदनाम कर देते हैं, ये तो है मौलवी, ये तो आज मौलवी भी एक लफ्ज गाली बन गया, मुल्ला, और इस तरह डिग्रेडिंग अंदाज में हम कहते हैं, ये पता चलता है क्या इज्जत है हमारे माशरे में, समझा जाता है कि जो बिल्कुल ही फकीर कहीं का मस्जिद के अंदर भी एक क्वार्टर सा उसको दिया हुआ है, बिल्कुल एक छोटे से कमरे के अंदर, वो उसके 6-8 बच्चे हैं और वो सारे के सारे वहीं पे हैं, और बस उसके पास कुछ है नहीं, और हमारे टुकड़ों पे पलने वाला है, हम देते हैं डोनेशन तो इसका काम चलता है, तो ये अगर इज्जत उस बेचारे की रह गई तो फिर क्या सोचें कोई उसकी बात सुनेगा। अच्छा, फिर उसके बाद सिर्फ इस पे बात नहीं खत्म होती, आगे भी सुने, ये तो बड़ी एक दर्दनाक कहानी है, ये पता है, आगे भी सुने इनका हाल, और ये अपना ही हाल है असल में तो। वह हसीबू, और उन्होंने समझा क्या, देखिए जरा अभी इनकी ढिटाई की इंतहा देखें, कि पहले उनको जुटलाया, अभी ये उनको हक को भी रद्द किया, उनको कत्ल तक कर दिया, इनसे इनको चैन नहीं आया, इनसे नहीं बर्दाश्त होता था कि ये हमें मना क्यों करती है। उन्होंने समझा इसके बाद, अल्लाह तकूना फितना तुम, कि हमें तो कोई मुसीबत ही नहीं आएगी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये जो हमने इनको झुटला रहे हैं, इनको झूठा कहते हैं, इनकी तकजीब करते हैं, इनको कत्ल भी कर दिया, तो वो समझते थे कोई कयामत नहीं आ गई, कुछ नहीं हुआ और कुछ नहीं होता। फितना का मतलब क्या? आजमाइश, कोई मुसीबत। तो वो ये इतनी उनकी ढिटाई देखें कि उसके बाद भी कोई ये नहीं कि परेशान हो जाने कि हाय हमारी पकड़ ना आ जाए कहीं, हाय हमने ये क्या काम कर दिया, नहीं, फिर भी ढीठों की तरह, हमारी जिंदगी हमारी मर्जी, मेरी जवानी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, वो कौन होता है हमें कहने वाले कोई, ये तो फनेटिक है, हमें आईना दिखाया जा रहा है, फिर भी हम कहते हैं ये सारा कुछ करके, इतनी करप्शन है, इतनी बेईमानियां, इस कदर दीन के जो है ना, जुबान से कहते हैं मुसलमान, लेकिन किरदार अखलाक में कोई इस्लाम नहीं है, फिर भी उसके बाद डरते नहीं है, डरते नहीं है कि कुछ आए हमारे पर मुसीबत ना आ जाए। बल्कि कई लोग कहते हैं नहीं जी ये जो कोविड भी आया ये थोड़ी हमारी शामत है अमाल, नहीं जी ये जो ये भी मुसीबत आई ये थोड़ी, ऐसे नहीं कहना चाहिए कि हमारी कोई पकड़ आ गई, नहीं, हम जब किसी के करतूत बिगड़े हुए हों तो उसकी पकड़ नहीं आती, तो और क्या होता है, वो जो भी आ रहा होता है उसके ऊपर उसकी शामत अमाल होती है, कोई आपके दर्जे बुलंद नहीं हो रहे कि इतने नेक थे, कि नेकों पे जब आजमाइशें आती हैं उनके दर्जे बुलंद होते हैं, अपने हालात देखिए उम्मत मुस्लिम, फिर बताए कि ये क्या दर्जे बुलंद करने के लिए, ये इसलिए कि तौबा इस्तगफार करो, वो खुदा का खौफ करो, क्योंकि अल्लाह ताला पैगाम भेजता है रसूलों के जरिए भी, अब रसूल नहीं आना तो अल्लाह पैगाम भेजता है मुसीबतों के जरिए भी, कि पैगाम सुन लो कि अल्लाह नाराज है, तुम्हारे हालात क्या हैं, तुम्हारी हरकतें क्या हैं, तुम क्या कर रहे हो, तो फिर भी लोग कहीं कहते नहीं ये तो अब ऐसे ना कहें कि कोई शामत आई है हमारे, ऐसे कोई कहने की जरूरत नहीं, यानी फिर भी तौबा की तरफ नहीं आना, फिर भी कोई एहसास नहीं, यानी उनको भी ना एहसास खत्म हो चुका था ये कि उनके अंदर जरा भी कोई इस चीज की परेशानी हो कि अब हमने गलत काम कर लिया ना, अब हमारे ऊपर मुसीबत आ जानी है, इस तरह की कोई परेशानी नहीं, करते जा रहे हैं और दीदा दलेर हैं, जैसे हमारी सोसाइटी में होता जाता है, जुल्म हो रहा है, कोई ऐसी ऐसी वाकियात हो रहे हैं, फिर भी वो चल रहे हैं, कोई मसला नहीं है, कोई उनको ये डर नहीं होता कि भाई आसमान गिर पड़ेगा, जमीन फट जाएगी, ये क्या हो गया, ये हमारे माशरे में क्या हो रहा है, किस किस्म की हरकतें हो रही हैं माशरे में, कई जराइम भी ऐसे हैं कि इंसान सुनता है तो कांप उठता है कि अल्लाह पता नहीं अब कयामत आ जानी है, लेकिन कोई डर नहीं। और सूरह नाजियात में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, मन खौफा मकाम रब्बी व नहा अन्नास अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मावा, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डरा, जिसको ये खौफ हो गया है ये क्या कर बैठा, ये क्या हो रहा है, जवाबदेही का खौफ, उनको कुछ नहीं था, वो कहते कुछ नहीं होता, ये सारी बातें ही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, फामू व सम्मू, फिर वो अंधे हो गए, बहरे हो गए, अंधे बहरे क्यों कहा, इसलिए कि लेकिन जब इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ता है ना, वो अंधा बहरा ही हो जाता है उनकी, क्योंकि वो कहते हैं ना ये तो अपनी ख्वाहिश के पीछे अंधा ही हो गया, यानी इसको कुछ नहीं और सूझता, अंधे बहरे ये भी इसका मतलब है कि यानी उन दो ही सोर्सेज हैं जिससे आपको हिदायत मिल सकती है, या तो आप कुछ सुन सकते हैं तो आपको हिदायत मिल सकती है, या कुछ देख के हिदायत मिल सकती है, जब वो अंधे बहरे ही हो गए तो उनको हिदायत कहां से मिलनी थी, हिदायत का चैनल ही उन्होंने बंद कर दिए, ये दो ही चैनल्स हैं, अब उन्होंने कोई समझाए उनको क्या, सुनते ही नहीं, बहरे हो गए, देखते ही नहीं, अंधे हो गए, वरना अल्लाह की कायनात, अल्लाह ताला की निशानियां इतनी हैं कि इंसान देखे तो समझ जाए, वो साइंस हैं कि ये हमारे ऊपर अजाब आने वाला है, या ये हम गलत कर रहे हैं, अल्लाह नाराज हो गया, ना निशानियां देखना चाहते हैं ना कुछ सुनना चाहते हैं, बस उन्होंने ठान ली भी है, बस हमने वो करना वही है जो हमारी मर्जी है, इसीलिए फिर जब जब कोई ऐसा ठान लेता है ना, तो फिर नबियों की बातें भी अजीब लगती हैं, फिर कुरान की बातें भी अजीब लगती हैं, फिर लोग यही कहते हैं ना, अजीब सी बातें हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती। बनी इसराइल ने भी तो यही किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे बहुत ब्रीफली इसका मेंशन है। फिर पता है क्या हुआ, जब ये इस तरह की हालात में पहुंच गए थे ना, जब बनी इसराइल के ये हाल हो गए थे, नबियों को कत्ल कर रहे हैं, तकजीब कर रहे हैं उनको, जो सच्चों के सच्चे उनको कहते हैं ये झूठे हैं, ये झूठ है ये सारा। अब उसके बाद भी उनको कोई एहसास भी नहीं रहा ना, जब तो फिर इनकी तारीख बताती है, इससे सीखें आप भी बात, कि इनकी तारीख बताती है कि जब बुराइयां हद से बढ़ गई और ये इस नहज पे पहुंच गए कि एहसास भी इनके अंदर से खत्म हो गया, तो अल्लाह ने इनके ऊपर अजाब मुसल्लत किया। किस तरह, अब वो वाला अजाब तो नहीं आया जो पिछली कौमों पर आया था, मगर अल्लाह ने इंसानों के जरिए इनको अजाब दिया। बुख्त नसर एक बादशाह था बाबुल का, उसने आके इनके ऊपर हमला किया, इनकी वो ऐसी तैसी फेर दी, ईंट से ईंट बजा दी, इनकी बैतुल मकदस को तो तबाह करके रख दिया, इनकी पूरी सल्तनत खत्म कर दी, इनके लाखों लोगों को कत्ल कर दिया, खून बहाए, उनके लाखों को गुलाम बना के ले गया वो अपने साथ, वहां जाके उनसे लेबर वर्क लेता था। यानी वो कौन सोचे जो उस वक्त की मुसलमान थी, जैसे आज हम है ना, और हम कहते हैं कि हम राइट पे हैं, उस वक्त वो थे। आज हमें लोग देख के कहते हैं ना, अच्छा अगर आपका इस्लाम इतना ही सच्चा है तो दुनिया में आप इतने जलील क्यों हो रहे हैं? ऐसे लोगों से मुझे, मैंने कहते हुए सुना, आपके पास क्यों इतनी मुसीबतें आने लगी हैं, आप कहते हैं आपका दीन ही सबसे सच्चा है। हाँ, तो जब हक पे होने वाले, जिनके पास हक है, जो सही दीन के ऊपर होते हैं, जो अल्लाह ने जिनको अपना नुमाइंदा बनाया होता है दुनिया में, जिनको अल्लाह ने चूज किया होता है अपने दीन की खिदमत के लिए, जब वो बिगड़ जाए ना, तो फिर उनके ऊपर वो शामत आती है कि जो किसी और पे नहीं आई होती। उनके ऊपर वो शामत आई कि अल्लाह ने दूसरी कौमों को, जो गैर कौमें थी, गैर मजहब, अब आप ये देखें ना, उस वक्त के मुसलमान ये हैं और वो क्या है, गैर मुस्लिम है उस वक्त के, ठीक है, उन गैर मुस्लिमों को इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। कहने को हम कहेंगे मुसलमान तो ये, जैसे आज अल्लाह का नाम लेने वाले इस जमीन के ऊपर सच्चे दीन वाले तो मुसलमान है, लेकिन उनके ऊपर गैर कौमों का क्यों तसल्लुत है, क्यों ये कांप रहे हैं गैर कौमों से, क्यों गैर कौमें अपना एक फैसला देती हैं और ये पूरा करने के लिए यस सर करते हैं, उनके जहनी गुलाम है, इकोनॉमी में उनके गुलाम है, फाइनेंसिस चलाने में उनके गुलाम है, मुल्क ही नहीं चल रहा, उनसे कर्जे ले लेके मर रहे हैं, वो चला रहे हैं अपनी इकोनॉमीज को, क्यों क्यों गुलाम बने हुए हैं, इसलिए अल्लाह ने उनको इनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। चलो उनके मुल्कों के ऊपर, बाज मुल्कों पे भी उनकी रसाई हो गई, लेकिन जहां पे मुल्कों में नहीं भी हुई, जहनी गुलाम है, अपनी सारी फाइनेंसिस के लिए, अपनी माली इमदाद भी इनकी तरफ देखते हैं, अपने दिफा के लिए इनकी तरफ देखते हैं, डिफेंस के लिए भी उनकी तरफ देखते हैं, ये आगे हमें बचाएंगे, ये हमारी मदद करेंगे, इनसे असलहा लो, हर चीज में उनके डिपेंडेंट है, इसलिए कि तुम्हें अल्लाह ने चूज किया था, तुम वो लोग हो जिन्होंने दूसरों को क्या पहुंचाना था, तुम तो अपना ही आप भूल गए। बिल्कुल सेम सेम टू सेम ये स्टोरी जो है ना, ये दोहराई जा रही है, मेरे नबी का कॉल सच्चा है कि तुम भी इनके पीछे चलोगे, इस तरह के बालिश्त बा बालिश्त, कदम बा कदम इनके पीछे चलोगे तुम, अपने से पहलों के पीछे। तो सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमसे पहले कौन, यहूदो नसारा? आपने फरमाया वो नहीं तो और कौन, फिर वो ही तो हैं जिनके पीछे तुम कैसे चलोगे, ऐसे पैरवी करोगे, बालिश्त बा बालिश्त, कदम बा कदम, अगर वो किसी गो के बिल में भी घुस जाए तो तुम भी वहां पे उनकी पीछे जाओ। और वाकई आज हमारा यही हाल है कि हम उनके पीछे उसी तरह उन्हीं चीजों में फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने भी इसी किस्म की सरकशियां की, उन्होंने भी इसी किस्म के, उनको समझाया गया लेकिन उन्होंने ना मान के दिया, उन्होंने भी अपने हालात नहीं बदले, वो भी ऐसे ना डर हो गए, उनको खौफ ही नहीं रहा कि हम गलत कर रहे हैं, कोई अंधे बहरे हो गए, फिर सुम्मा तौब अल्लाहु अलैहिम, फिर अल्लाह ने उन पर मेहरबानी की, ये कब मेहरबानी की, पता है आपको ये बात, कि अल्लाह ने क्यों फिर उन पर मेहरबानी कर दी, अल्लाह क्यों उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ अपनी रहमत के साथ, इसलिए कि जब इनके ऊपर ये हालात आ गए ना, कि ये सोचे इनके बच्चे गुलाम, औरतें गुलाम, कितने कत्ल हो गए, इनकी तो कुछ रहा ही नहीं। सोचो एक मुसलमान कौम कैसे गैर मुस्लिम मुशरिक कौमों के अंडर और उनके लेबर वर्क कर रही हो, अपनी मजदूरियां इनसे लेते थे, इतनी जिल्लत में आ गए। तो उन्होंने कहा हमने गलत किया है, फिर इनको होश आया, फिर उन्होंने तौबा इस्तगफार की, अपने आप को बदला, क्या क्या कुछ किया, तो अल्लाह ताला ने फिर इनकी तरफ मेहरबानी फरमाई, इनकी तौबा कबूल की। तो फिर ईरान का एक बादशाह था, उसने इनको जाके आजाद कराया, इनको आजादी दिलाई। अच्छा अब आजाद हो गए, लेकिन वो जो ढीठ होते हैं वो फिर ढीठ ही रहते हैं। अच्छा आजाद हो गए कुछ अरसा तो ठीक रहे, फिर उसका फिर वही हरकतें शुरू हो गई, फिर वही चीजें, फिर वही काम, फिर क्या हुआ, सुम्मा आमू व सम्मू कसीर उनमें, फिर वो अंधे बहरे हो गए बहुत से उनमें से, यानी फिर वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े, अपने अल्लाह की हदों को तोड़ने लगे, फिर बिगड़ गए। वो फिर दोबारा इनकी पकड़ हुई थी, आपको पता है एक और बादशाह था टाइटस, उसने फिर आके इनको हशर नशर कर दिया इनका। तो जो कौम भी अल्लाह की बात को छोड़ के अंधी बहरी बन जाती है, फिर देख लेंगे उनका हशर क्या होता है। फिर अल्लाह इस दुनिया में से दूसरे इंसानों के जरिए इनको जलील कराता है, इनकी शामत लाता है, फिर अल्लाह की तरफ से ये एक पैगाम होता है उनके लिए कि ये जो गैर मुस्लिम, जो जो गैर कौमें, मुशरिक कौमें और ऐसी दहरीय कौमें, वो तुम्हारे पर मुसल्लत हो गई है, तो सोचो फिर तुम्हारा हाल क्या हो गया। यानी एक बादशाह को कोई फकीर अपना गुलाम बना ले, तो सोचो इससे बड़ी जिंदगी क्या बात हो, है ना। मतलब कोई भी बनाए तो बुरा है, लेकिन सोचे कि बादशाह के रहने उसमें उसकी आवाम में कोई फकीर है, उसने उसको अपना गुलाम बना दिया, तो क्या हो। इसी तरह उम्मत मुस्लिमा के सर पे ताज है ईमान का, आखिरी उम्मत होने का, इसको वो लोग अपना गुलाम बना लें जिनके पास कोई दीन ईमान ही नहीं है, जो मखदूबी अलैहिम है, जो दालीन है, तो सोचो फिर वो उम्मत किस जगह पे पहुंच चुकी है। फिर हम कहते हैं हमारे पास दूसरे क्यों मुसल्लत हो गए, इस्लाम अगर इतना अच्छा है तो फिर क्यों औरों से हम पिट रहे हैं। जब अल्लाह की नुमाइंदा उम्मत, यू आर रिप्रेजेंटेटिव, तुम रिप्रेजेंटेटिव हो अल्लाह के दीन के, और कौन है आप बताएं फिर, और कौन है अगर आप नहीं है, जो अब कलमा पढ़ता है ना, जिसने इस्लाम का कलमा पढ़ा है वो अल्लाह के दीन का नुमाइंदा है, अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव है इस दुनिया पे, इस जमीन पे, और क्या क्रिश्चियन है और क्या यहूदी है, और मैं किसकी तरफ देखूं, किसको कहूं, ये उम्मत मुस्लिमा ही है ना नुमाइंदा। अगर नुमाइंदा ही आज उठ के, उसको तो पता ही नहीं मैंने कोई नुमाइंदगी कर रहा हूं, वो कह रहा मैं तो ये गो के मिल में भी जा रहे हैं ना, अच्छा ये अच्छा ही होगा अगर ये गो के मिल में घुसे हैं, गो क्या होती छिपकली, उसकी मिल में ये घुसे हैं ना, जरूर अच्छी चीज होगी, मैं भी इसमें घुस के देखता हूँ, ये आज कर रहे हैं वाकई। ये नुमाइंदा उम्मत ही अगर दुनिया कमाने में लग गई, तो दुनिया और मिलती जाए, शोहर भी जॉब, बीवी भी जॉब, बच्चे भी जॉब, सारा घर कमाइयां करने में लगा, इतना कमा लो, इतना बना लो, ये कर लो, वो कर लो, इधर खरीद लो, उधर पहन लो, ओढ़ लो, खा लो, पी लो, मजे कर लो, फन एंटरटेनमेंट, बस इसी के अंदर पड़ गए, यही उनकी जिंदगियां बन गई, तो फिर जूते ही पड़ेंगे और क्या होगा, क्या होगा, और अल्लाह की तरफ से रहमतें तो नहीं आनी। सोचो सोचो ये आयतें ना बड़ी इनमें डेप्थ है और बहुत सख्त है, ये इन आयतों से हमारा अंदर झुंझोड़ दिया जाना चाहिए, ऐसे पढ़ के ना गुजर जाओ, ये किसी की तारीख है, वो कैसे उठे, कब अल्लाह उनके पर मेहरबान हुआ, फिर कब उनको अल्लाह ने डाउनफॉल दिखाया, कब जवाल, कब उरूज, फिर जवाल, फिर उरूज, ये दास्तान है, ये हमें बताती है कि तुमने क्या करना है, तुम कैसे चलोगे, ये बताती है कि कब शामतें आती हैं कौमों की, और कब अल्लाह उनकी तरफ मेहरबान हो जाता है। तो फिर क्या करना है तुम्हें, अगर इसको भी पढ़ पढ़ के रखते जाओगे और कुछ नहीं करोगे तो फिर कैसे बदलेगा, ये दुआएं करने से नहीं होगा कि अल्लाह हमें उरूज दिखा इस्लाम का, ठीक है आप दुआएं करते रहे लेकिन अपने आप को बदलने से होगा, तुम अल्लाह की तरह मुतवज्जे हो जाओ, वापिस पलट आओ, तो अल्लाह भी तुम्हारी तरफ मेहरबान हो जाएगा। अल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह देखने वाला है उसको जो वो अमल करते हैं, अल्लाह की नजरों में है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तब भी इन्होंने अपनी हरकत नहीं छोड़ी, उस वक्त भी यही काम करने लगे कि आपको जुटाना शुरू कर दिया। सब अल्लाह को पता है।